ओम शांति। भारत के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने ईसा पूर्व ही भारत को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया था। भारत पर होने वाले आक्रमणों को रोका था और भारत को एक अखंड भारत के सूत्र में पिरोहित किया था। एक छोटा बच्चा एक दिन देखता है कि उसकी माँ बहुत दुखी है, उदास है, रो रही है। वो जाकर अपनी माँ से पूछता है, तुम इतनी उदास क्यों, तुम क्यों रो रही हो? माँ पहले नहीं बताती और फिर बाद में कहती है कि तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है कि तुम बहुत प्रसिद्ध होने वाले हो। वो कहता है, क्यों? माँ कहती है, कुंडली में लिखा है कि तुम्हारे जैसे जिसके दांत होंगे वो व्यक्ति, वो लड़का बहुत प्रसिद्ध होगा। तो वो पूछता है, क्या तुम नहीं चाहती मैं प्रसिद्ध हूं? वो कहती है, कौन माँ नहीं चाहेगी कि तुम, अब उसका बेटा बहुत फेमस हो जाए। पर माँ कहती है कि परंतु जब तुम प्रसिद्ध हो जाओगे तब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे या शायद तुम मुझे भूल जाओगे, इसलिए मैं दुखी हूं। तो वो बच्चा जाता है और एक पत्थर लेता है और उस पत्थर से अपने आगे के दो दांत तोड़ देता है, पूरा खून, और माँ को जाके दांत देता है और कहता है कि इन्हीं दांत की वजह से मैं प्रसिद्ध होने वाला हूं ना, तो मैंने उस दांत को ही तोड़ दिया क्योंकि मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। तो वो उस बालक का प्यार था उसकी माँ के लिए, उसी को संसार ने कौटिल्य, चाणक्य कहा, जिसका स्वप्न था अखंड भारत। और ऐसा स्वप्न केवल वही आत्मा देख सकती है शायद जो देवकुल की थी, जहां भारत एक था, एक धर्म, एक राज्य था। वही स्मृतियां शायद द्वापर युग में भी थी, इसीलिए खंड खंड में बटा जो भारत था, 16 जनपदों में बटा जो भारत था, उसने पहली बार संकल्प किया कि एक भारत हो और एक राजा का निर्माण किया जो कि भारत का प्रथम सम्राट था, चंद्रगुप्त। तो प्रेम में ऐसी शक्ति है, जननी के लिए प्रेम और फिर मातृभूमि के लिए प्रेम। प्रेम निस्वार्थ होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे रूहानी प्रेम की, रूहानी प्रेम का जादू, जिस्मानी प्रेम का शायद सभी ने अनुभव कर लिया, कितना दुखदाई है। अंततः शुरुआत में सुख जैसा महसूस होता है, अमृत की तरह है, पर बाद में वही जिस्म का प्रेम दुख बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। इसलिए भगवान जब धरा पर आते हैं तो एक नए प्रेम की परिभाषा हमें देते हैं और वो है स्पिरिचुअल लव। साइकोलॉजी उसको कहती है प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल लव। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। प्रेम को शरीर से कोई भी लेना देना नहीं है और संसार के सारे जो प्रेम है उनको लेना देना केवल शरीर से है। शरीर केंद्र है और सारे प्रेम उस शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। भगवान एक नए प्रेम, एक नए प्रेम की परिभाषा और एक नया प्रेम हमको सिखाते हैं और उस प्रेम को कहते हैं स्पिरिचुअल लव। इस प्रेम के बगैर हम अधूरे थे, आधे आधे पूरे हुए हैं हम। आसमां मिला जमी को मेरी, आधे थे जब से वो आया, तब से अपूर्ण हुए, अपूर्णता उसने मिटाई है। संसार का कोई भी देहधारी हमारी इस अपूर्णता को, इनकम्प्लीटनेस को, इम्परफेक्शन को मिटा नहीं सका, इसलिए अब वो भगवान आया है। तो सबसे पहला तो आप सबसे प्रश्न है, एक तरफ है जिस्मानी प्यार और एक तरफ है रूहानी प्यार, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का ही सबने अनुभव किया है, इन दो प्रेम में क्या अंतर है? जिस्मानी प्यार अर्थात पति पत्नी, बच्चे, रिश्ते, संबंधी, मित्र, आशिक माशुक सारे एक तरफ, और रूहानी प्यार अर्थात लव ऑफ गॉड, रूहानी प्यार अर्थात ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम, द लव डिवाइन, द स्पिरिचुअल लव, क्या अंतर है? ईश्वरीय प्रेम प्योर है और जिस्मानी प्रेम इम्प्योर है। वो शुरुआत में प्योर जैसा दिखता है, परंतु विकार की गंदगी में चला जाता है धीरे धीरे, स्वार्थ से भरा है वो प्रेम। जब तक व्यक्ति सुंदर है तब तक उससे प्रेम है, जिस दिन वो कुरूप हो जाता है उस दिन प्रेम अपने आप कम हो जाता है, उसके आधार टूटते हैं। जेलसी है उस प्रेम में, उस प्रेम में जिससे प्रेम है, यदि उसको किसी और से प्रेम हो जाए तो ठीक लगता है? बेचैनी, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्विकार प्रेम है ये, अनकंडीशनल प्रेम है, अविनाशी प्रेम है, रूहानी, अपेक्षा रहित प्रेम है। उसमें इतनी अपेक्षाएं होती है, ढेर सारी अपेक्षाएं उस प्रेम में। परमात्मा प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर है अमेरिका का, द ट्रायंगल ऑफ लव। उन्होंने कहा कि प्रेम के तीन कोण हैं, फर्स्ट लव और लव सेक। लव डजंट बेग, भीख नहीं मांगता है, केयर दो, अटेंशन दो, प्रेज स्तुति करो, सिंपति हमदर्दी, कुछ भी नहीं चाहिए प्रेम को। जो प्रेम मांगे वो प्रेम ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम भी हमारे लिए करो, हमने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम भी हमारा ध्यान रखो, प्रेम को कुछ भी नहीं चाहिए, लव डजंट बेग। दूसरा, प्रेम में कोई भय नहीं है, निर्भय है प्रेम, और या फिर प्रेम व्यक्ति को निर्भय बना देता है। वो सारी दादियां कैसे एकदम से निर्भय बन गई, वो सारी माताएं जिनके पति विदेश गए थे और जब आए तो उनका रूप ही बदल गया था, सभी ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो गई, लड़ने को तैयार थी, वो सब मारने को तैयार थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ा। ये प्रेम की शक्ति थी जिन्होंने उनको निर्भय बना दिया। और तीसरा, लव में कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो जिससे प्रेम है वो अगर आगे जाए तो हमें दुख हो, और ही खुशी होती है। यदि उसको किसी और से प्रेम है तो हमें ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, जिससे प्रेम है उससे भी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिससे प्यार है एक दिन उसी से सबसे ज्यादा नफरत भी हो जाती है। जिससे बहुत ज्यादा प्यार था एक दिन ग्रेटेस्ट हेट्रेट उसी के लिए हो जाती है। वास्तव में वो प्रेम था ही नहीं, जिसमें कंपैरिजन है, जिसमें फियर है, जिसमें बेगिंग है, भीख मांगना है। प्रेम अनकंडीशनल है, और ऐसा प्रेम केवल और केवल बाबा से हो सकता है, या बाबा का हमसे जो प्यार है वो निस्वार्थ है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो ये भी नहीं कहता है कि तुमने ये, मैंने होमवर्क दिया था तुमने किया नहीं, इसलिए तुम्हारा अबसे तुमसे मैं कम प्यार करूंगा, ऐसा भी नहीं कहता है वो। पर एक दिन आएगा जब वो कहेगा शायद कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो आउट, खड़े नहीं हो जाओ, आउट। बाबा ने कहा यज्ञ एक दिन हिलेगा और जो जो कच्चे हैं सब यहां से निकल जाएंगे, जो एकदम पक्के हैं बस वही टिकेंगे, जिनके अंदर धारणाएं हैं वही रहेंगे यहां, बाकी सब आउट। एक अव्यक्त वाणी है 4 दिसंबर 1995। बाबा ने कहा है किसने कितने भाषण दिए, फाइनल मार्क्स इसके ऊपर नहीं है। किसने कितने सेंटर खोले हैं, फाइनल मार्क्स इसके ऊपर नहीं है। शायद टीचर से मुलाकात है। बाबा ने कहा है 30 सेंटर है उसमें से 15 हिल रहे हैं, तो क्या किया, केवल नाम कमाया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितने कोर्स कराए, कितने सेंटर खोले, कितनी प्रदर्शनी की, कितने प्रोग्राम किए, फाइनल मार्क्स इसके ऊपर नहीं है। फाइनल मार्क्स की बाबा ने परिभाषा दिया है, दी है कितनी आत्माओं को योग्य बनाया और कितने स्वयं शक्तिशाली रहे, इस पर फाइनल मार्क्स है। जिसकी स्थिति आगे है वो आगे है, जिसकी पवित्रता आगे है वो आगे है, नहीं तो वर्तमान समय सेवाओं का इतना विस्तार है, इतना विस्तार, इतना मीडिया कि व्यक्ति सेवाओं के ही जंगल में खो गया है। ज्ञान रहित योग रहित सेवा है, ऐसी सेवाएं कभी भी सफल नहीं होती। तो रूहानी प्रेम में क्या है, कोई कंडीशन नहीं है, रूहानी प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, रूहानी प्रेम में कोई दुख नहीं है, रूहानी प्रेम में कोई कंपैरिजन नहीं है। इट इज लव फॉर लव सेक, स्वार्थ नहीं है। हम भगवान से स्वार्थ से प्रेम करते हैं या निस्वार्थ से भाव से प्रेम करते हैं? अगर वो आके कहे कि ऐसा कोई स्वर्ग वगैरह नहीं आने वाला है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अब बोलो मैं तो ऐसे ही कह रहा था तो हम कहेंगे अच्छा स्वर्ग नहीं आ रहा है तो चलो हम अब तुमसे प्यार करना कम बंद। हमारा प्यार इसलिए नहीं कि वो कुछ दे रहा है, आत्मा का प्यार, आत्मा का स्वभाव ही है, वेरी बेसिक नेचर है आत्मा का कि वो परमात्मा से प्रेम करे, इसलिए प्यार है। परमधाम में संपर्क है, धरती पर संबंध है, अनुभूति यहां है, वहां केवल संपर्क है। आत्मा परमात्मा वहां भी साथ है पर संबंध नहीं है, केवल संपर्क, कनेक्शन, यहां पे रिलेशन है, यह अंतर है। इसलिए आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का मूल नेचर है, इट कैन नॉट लिव विदाउट गॉड। आत्मा परमात्मा केंद्र है, जब तक वो इस केंद्र तक नहीं पहुंचती दुखी रहती है, उदास रहती है, लोगों के साथ उलझती रहती है, इसको अपना कहती है, उसको अपना कहती है, उसको अपना कहती है, सब स्वार्थ से भरे प्रेम है संसार में। तो ये एकमात्र परमात्मा प्रेम ही है जो आत्मा की प्यास बुझाता है। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि अमृत वेला स्वयं को इतना प्रभु प्रेम से भर दो, कितना, कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी की याद ना आए। अगर सारे दिन भर देहधारियों की याद है, सारे दिन भर देहधारियों से संपर्क हो रहा है और उनसे अटैचमेंट और फैमिलियरिटी उत्पन्न हो रही है, अर्थात सुबह कम भरा था। आत्मा को प्यार चाहिए, बस उसकी बेसिक थर्स्ट प्रेम के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए। अगर ये तीनों चीजें उसे अमृत वेला नहीं मिलती है भगवान से, तो ये तीनों चीजें वो कहां ढूंढेगी, वस्तुओं में, भोजन में, नाम में, पद में, संबंधों में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तों में, सब बातों में, भोग विलास में, क्योंकि उसको सुख चाहिए। और वो सुख उसे अगर नहीं दिया जाए अमृत वेला, आत्मा डूबती नहीं है उसके प्रभु प्रेम में, तो वो खोजेगी बाहर, खोजेगी और नहीं मिलेगा वो चीज, और मिलती भी नहीं है कभी। भ्रम होता है मिल रहा है पर है नहीं उसमें, इल्यूजन। प्रभु प्रेम की बहुत सारी विशेषता है, और इस प्रभु प्रेम से एक तो है परमात्मा प्रेम, रूहानी प्यार। रूहानी प्यार में एक दूसरी एक बात है, आत्माओं का आत्माओं से प्रेम। आपस में हमारा कैसा प्रेम हो? रूहानी प्रेम हो, जिस्मानी ना हो। अर्थात क्या? शरीर पर आधारित प्रेम ना हो। महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो जो मंच संचालक था, एंकर, उसने इंट्रोड्यूस किया, आज हमारे बीच में महात्मा गांधी जी आए हैं। और वो अपनी पत्नी को बा कहते थे, तो मंच संचालक ने इंट्रोड्यूस किया, साथ में उनकी माँ भी आई है। तो फिर महात्मा गांधी जी का जब टर्न आया, तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी माँ है। एक समय था जब से उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली दोनों ने मिलकर, 1906, शायद एट द एज ऑफ 36, उन्होंने कहा अब ये मेरी पहले पत्नी थी, अभी तो मैं इसे माँ ही समझता हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है चेतना का। आपस में जो हमारा प्रेम हो वो रूहानी प्रेम। बाबा ने कहा भाई बहन की भी दाल नहीं गलेगी, भाई बहन के रिश्ते से भी ऊपर निकल जाना है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज क्या कहती है, करती है, भाई बहन बनाते हैं। गलत बोलते हैं वो लोग, हम भाई बहन नहीं बनाते, भाई भाई बनाते हैं, ऐसे उनको बोलना। आप लोगों ने गलत सुना है, हम थोड़ा सा ऊपर का बनाते हैं, उससे सभी को भाई बना देते हैं। तो हमारा आपस में स्पिरिचुअल प्रेम, प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल लव, जब भी थोड़ा सा नीचे आएगा लव, तो फिजिकल लव जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फिजिकल लव में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, और जो कभी पूर्ण नहीं होती है, इसीलिए निरंतर देखा गया है पति पत्नी में द्वंद्व होते रहते हैं, झगड़े। उसका मूल कारण है काम, लस्ट। ऊपर से कुछ और दिख रहा है, मतों में विरोध, परंतु मूल कारण है काम और कामनाएं। इसलिए प्रेम को ऊंचा उठाना है, आपस में रूहानी प्यार, लगाव वाला प्यार नहीं चाहिए, आसक्ति वाला प्यार नहीं चाहिए। क्योंकि जिस मन में आसक्ति है, लगाव है, कामुकता है, वो आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में बढ़ नहीं पाती आगे। ब्राह्मण परिवार में ही आपस में लगाव है, भाई बहन का, भाई भाई का, बहन बहन का, कोई भी लगाव है तो आत्मा रुक जाती है वहां। तो लव ऑफ गॉड, जब हम कहते हैं परमात्मा प्रेम, इसका क्या अर्थ है? केवल बाबा से प्यार नहीं, रूहानी प्यार, अर्थात केवल बाबा से प्यार नहीं, बहुत सारी चीजें। बाइबल में एक स्टेटमेंट है, नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल इतना कहने वाला नहीं कि हे प्रभु, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो मेरे पिता की श्रीमत पर चलेगा शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल वही आएगा, केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा ने कहा है ये दिल का सौदा है, मुख का नहीं, ये मुख का सौदा नहीं है। तो रूहानी प्यार या परमात्म प्यार, अर्थात 10 बातों से प्यार, जो आप सभी जानते हैं, फिर भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बाबा से प्यार, अर्थात मुरली से प्यार। कोई कहता है मेरा भगवान से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है, जब से बाबा जीवन में आया बहुत खुश हूं। मुरली उसके लिए टाइम नहीं है। मुरली मुरली थी यहां पर, मुरली हम घर पे ही पढ़ लेंगे, मुरली हम कार चलाते चलाते सुन लेंगे, मुरली हम मोबाइल में पढ़ देंगे। भगवान से प्यार, अर्थात सबसे पहले उसकी वाणी से प्यार, वो जो कह रहा है उसके वाक्यों से प्यार। वैसे ही नहीं होगा, हम सीना चीर के दिखा देंगे अंदर शिव बाबा है, वो है, पर मुरली का क्या, मुरली से प्यार नहीं है। और मुरली हमेशा यहाँ आकर ही सुननी है। सुबह भी बताया कि यहाँ के वायुमंडल में पावर है, शक्ति है, और भगवान ने निमित्त बनाया है इस स्थान को, इसलिए इस स्थान का बहुत अधिक महत्व है। इसको मधुबन ही समझना है, मिनी मधुबन। जगदीश भाई जी से कभी बाबा ने कहा था सेंटर के लिए, सेंटर ऐसा हो जिसकी दीवार किसी भी विकारी की दीवार से टच ना हो, ये ऐसा ही है। दूसरा, एक पैसा भी किसी विकारी का ना लगे। और तीसरा, वो केवल दिल्ली के लिए था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। तो ये सेवा केंद्र सबसे बड़ा तीर्थ है, ये सेवा केंद्र ही मधुबन है। इसके लिए यहां आना है, यहां के वातावरण में आना है, क्योंकि यहां आते ही यहां के वाइब्रेशंस हमको फील होते हैं और आत्मा में अपने आप शक्ति भरती है। हो सकता है मुरली में चार पेज की जो सुनी उसमें कुछ भी नया नहीं मिला आज, पर यहां आकर बैठे उसके भी मार्ग से, यहां आकर बैठे इस संगठन के बीच में आए, ब्राह्मण परिवार के बीच में आए, अपने आप एक सूक्ष्म आत्मा में ऊर्जा भर जाती है। नहीं तो सारे दिन भर बाहर माया ही माया है, विकारों की वायु है, काम विकार हवाओं में है, संसार के सारे लोग विकार में डूबे हैं। उनके लिए वही एकमात्र सुख का स्रोत है, उसके अतिरिक्त सुख है ही नहीं कुछ। उन्हें पता ही नहीं कि इस शरीर से भी ऊपर कुछ और भी है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर की सजावट, शरीर का भोजन, शरीर का आकर्षण, शरीर की भाषा, शरीर का देश, शरीर के वस्त्र, सब 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 शरीर के लिए है। यहां एकमात्र स्थान है जहां भगवान की वाणी सुनाई जाती है, इसलिए मुरली यहां के सुनिए। यह पहला, भगवान से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, और मुरली से प्यार अर्थात मुरली में पांच शब्द है, एम यू आर एल आई, पांच काम करने हैं मुरली से। एम अर्थात मनन, मुरली का क्या करना है, वो मुरली थी ना सुबह लेके आए, मुरली अर्थात सबसे पहला काम क्या करना है मुरली से, मनन। केवल लिखना नहीं, केवल सुनना नहीं, क्या करना है उस पर, मनन करना है। कैसे मनन करेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल लो वहां से, कुछ ना कुछ टॉपिक्स निकाल लेना वहां से, कोई ना कोई एक टॉपिक निकाल के रखना और उसके ऊपर फिर सारे दिन भर चिंतन करना। इसलिए मुरली लिखना, ऐसे जिनके पास डायरिया लेनी है पीछे रखिए सबकी डायरी, वो ले लो सब अपनी अपनी डायरी, एक मुरली दे दीजिए मुझे कोई भी, साकार मुरली होगी तो वो दे दो। तो मुरली का क्या करना है, सबसे पहला काम चिंतन करना है, मनन करना है। क्या कहा, क्यों कहा, चिंतन की विधि है वाय, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, इस तरह के प्रश्न पूछना अपने आप से। एनालिसिस जब किया जाता है, ठीक, एनालिसिस जब किया जाता है कोई भी चीज का, तभी वो समझ में आती है। जैसे इतनी बड़ी मुरली है, अब इसका हमको चिंतन करना है। हमने चिंतन का एक बिंदु उठाया, हमारे बोल कैसे हो, मुरली में सुबह बताया कुछ बातें लिखी है, पर अब प्रश्न यह है बोल का आधार क्या है। एक व्यक्ति है जिसको हम उससे बहुत नफरत करते हैं, ठीक है, और फिर वो संपर्क के बाहर हो गया, 10 साल तक उससे हमने बात नहीं की, वो कहीं विदेश चला गया या और कहीं चला गया, और तब तक हमने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाई, तब तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, बहुत पावरफुल स्टेज, योग की अवस्था, सब कुछ, और एक दिन अचानक वो सामने आ गया और हमारे मुख से उसके लिए एकदम से कटु शब्द निकल गए, और फिर हमें पश्चाताप हुआ कि ऐसे मैंने क्यों बोल दिया, ये क्या हो गया? बोल का आधार क्या है? संकल्प। बोल का आधार क्या है? यहां तो संकल्प बहुत अच्छे थे, सभी के लिए अच्छा बोलना है, फिर भी एकदम आत्मा अचानक आ गई 10 साल के बाद, जिसके लिए बहुत घृणा थी, नफरत, उसने हमारे साथ बहुत बुरा बुरा किया, हमें बहुत सताया, षड्यंत्र किए, झूठ बोला, झूठे आरोप लगाए, ऑफिस का कोई व्यक्ति जिसने एक्यूजिशन किया फॉल्स, और फिर वो कहीं चला गया और अचानक 10 साल के बाद आए, उसके बीच हम ज्ञान में आ गए और डेली मुरलियां पढ़ रहे, लिख रहे हैं, समान मैं विश्व कल्याणकारी हूं मेरे बोल मधुर है, मोतियों की वर्षा, प्रेरणादायक, रिकॉर्ड करने योग्य, विश्व में वाइब्रेशन, महान। 10 दिन तक इसका अभ्यास किया और अचानक वो आ गया, पत्थरों की वर्षा बोल का आधार क्या है? हम जो बोल रहे हैं वो कहां से निकल रहा है? थॉट्स तो ठीक है, भावनाएं। बोल का आधार क्या है? जब तक किसी के प्रति घृणा है, उसके लिए अच्छी भावना, उसके लिए अच्छे शब्द कभी नहीं निकलेंगे। एक एम्प्लॉय है, वो अपने बॉस से घृणा करता है, इसके लिए छुप छुप के उसकी ग्लानी करता है बैठ के, जब तक वो उसे माफ नहीं कर देगा। उसके बोल ठीक नहीं होंगे। हमने ऐसे कितने लोगों को अंदर बिठा के रखा है कि जिनको हमने अब तक माफ किया नहीं है और करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया हमारे साथ बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, इसके लिए माइंड कहता है ना, सबको माफ कर देंगे, बाकी इनको नहीं करेंगे। जो घर वाले जो एकदम नजदीक है उनको छोड़ के बाकी सबको माफ। उधर भूकंप आया, आधा घंटा योग सकाश, और जो घर में भूकंप आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है घर ही हिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम जाके योग करेंगे विश्व के लिए। अव्यक्त महावाक्य बाबा के एक आत्मा के लिए भी मन में अगर घृणा है तो हम संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। सिंगल सोल जिसके लिए डिसलाइक है मन में, तो सबसे पहला है मनन। तो मुरली की हमने एक पॉइंट उठाई थी आज, अभी बोल। तो बोल का आधार है सबकॉन्शियस माइंड में जो भावनाएं हैं, संस्कार है, वो उस लेवल पे काम करना है। सारे दिन पर किसे क्या बोलना है इस पर काम नहीं करना है, नहीं तो हम सोचते हैं आज वो मिलेगा ना, बहुत अच्छा बात करूंगा, बहुत अच्छा बात करूंगा, बहुत अच्छा बात करूंगा, और जैसे वो सामने आया गड़बड़ हो गई और फिर पश्चाताप। सोचा था, पूरा प्लानिंग की थी ये बोलूंगा, परंतु जैसे वो आया सब चला गया। दमन ज्यादा समय चलता नहीं है, सप्रेशन, फीलिंग्स का सप्रेशन अगर करो तो ज्यादा समय नहीं चलता, बाहर आता ही है। बीच में दो कन्याएं आई थी मधुबन में, उसमें से एक कन्या उसको हॉस्पिटल लेके आई, कहने लगी ये इसको कुछ करो, दो दो घंटे में भूख लगती है इसको, मधुबन में आने के बाद, बाकी उधर नहीं, उधर ठीक रहती है, इधर एक एक घंटे में उसको खाने के लिए चाहिए। तो ये कैसी बीमारी है? तो उसको इन्वेस्टिगेट किया थोड़ा सा डेप्थ में, तो पता चला वो जहां रहती है सेवा केंद्र, वहां एक एक चीज गिन गिन के होती है, तो उसको खाने को नहीं मिलता है उधर, इसलिए मधुबन में आती है तो उसको भूख की भूख लगती है, एकदम सुनामी आ जाती है भूख की, क्या खाऊं और क्या नहीं। तो जहां जहां सप्रेशन होगा फिर वहां सुनामी आएगी, चाहे वो काम विकार हो, फिर दबा के रख दिया है लस्ट को, ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, सब्लिमेट नहीं किया है उसको, दबाया है, वो बाहर निकलेगा। क्रोध दबा के रखा है, एक दिन अपने आप निकलेगा। लोभ अपने आप, हर विकार जिसको दबाया जाएगा वो निकलेगा। विदेश में एक ग्रुप था सन्यासियों का, फ्लैजलिस्ट नाम का ग्रुप, वो अपने हाथ में एक चाबुक रखते थे। जैसे ही काम विकार का संकल्प आए अपने आप को मार देते तब तक जब तक खून ना जाए, सब वो उसको खत्म करने के लिए। लोगों ने काम को जीतने के कई मार्ग निकाले संसार में द्वापर से अब तक, क्योंकि ये तो सबको ही पता था सन्यासियों को कि हमें पवित्र बनना है, ब्रह्मचारी रहना है, पर इतना आसान नहीं है। तो ये एक नया मार्ग निकाला उन्होंने, दैट ग्रुप वॉज कॉल्ड फ्लैजिलिस्ट। अपने आप को सताते थे तब तक जब तक खून ना आ जाए, पर इसका कुछ उल्टा परिणाम हो गया बाद में। मारने लगे, जब ज्यादा खून आता था तो और ज्यादा विकार के संकल्प आते थे। वो चालू इसलिए किया था ताकि खत्म हो जाए, बट दैट वॉज अ पाथ ऑफ सप्रेशन। तो जहां जहां सप्रेस्ड होगा वहां वहां सुनामी आएगा। बोल का सप्रेशन, फीलिंग्स का सप्रेशन करके रखा, कोई इच्छा का सप्रेशन करके रखा। पहले लौकिक में थे, कॉलेज में थे, बहुत इच्छा थी जॉब करूं, पैसे कमाऊं, और फिर बीच में ही अचानक ज्ञान मिल गया, और फिर ज्ञान में आया अरे सब विनाश हो रहा है, खत्म खत्म, सब छोड़ो, और फिर सीधा आ गए ब्रह्मा कुमारीज में। और 10 साल रहने के बाद पुरानी इच्छाएं वापस जागृत हो रही है। सप्रेशन हुआ था, माताएं पति ने शरीर छोड़ दिया, रोती नहीं है। ब्राह्मण परिवार कहेंगे अरे तुम में मोह था, आंसू को सुखा दिए, और फिर डिप्रेशन, उदासी, क्योंकि सबको दिखाने के लिए रोई नहीं, क्योंकि रोएंगे तो ब्राह्मण परिवार कहेंगे अरे रे 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 तुम तो बहुत ज्ञानी थी और पति मर गया, आत्मा चली गई और तुम रोती हो। सप्रेशन हुआ है वहां। हम इतने सारे डिप्रेशन के पेशेंट्स देखते हैं, ब्राह्मण बीके भाई और बहने, उनके अंदर गहरा डिप्रेशन है। किस कारण से? इसी एक कारण से, सप्रेशन हुआ है कहीं ना कहीं। इसके लिए सप्रेशन कभी भी विधि नहीं है। दो मार्ग है, एक है भोग, एक है सप्रेशन, दोनों ही करेक्ट नहीं है। बाबा ने एक तीसरा मार्ग बताया है, उस मार्ग का नाम है प्रेममयी ज्ञानमयी समझ। चीजों को समझना है, दबाना नहीं है। समझ जाए कि ये व्यर्थ है, अपने आप छूट जाएगी वो। अच्छा, बाहर का भोजन कितने लोग खाते हैं होटल का? इस सभा में शायद ही कोई होगा जिसको बाकी ज्ञान समझ में नहीं आया, बहुत ही कम होंगे जो बाहर का खाते हैं। या नॉनवेज कौन कौन खाता है? जो पहले खाते थे और फिर छोड़ दिया, पहले खाते थे फिर छोड़ दिया, क्या 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 पुरुषार्थ किया छोड़ने के लिए? कुछ भी नहीं। क्या पुरुषार्थ किया? कुछ भी नहीं। क्यों? या अभी डर लगता है अगर कहीं से जाऊं और वहां कुछ बना है तो नहीं नहीं मुझे वहां देखना नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी देख लूं तो याद आ जाए, ऐसे होता है? नहीं। क्यों? सप्रेशन अर्थात, सप्रेशन में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, उसमें दबाना पड़ता है। उधर से वो दुकान है, उस गली से नहीं जाना, इधर से जाना है। वो अगर मिठाई देख ली वहां, समोसा वहां देख लिया तो वो खाने की इच्छा होगी, वो मुझे नहीं खाना है, ना 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 ना, ना। फिर बाहर का नहीं, हम तो अंदर का खाते। क्यों इतना आसानी से भोजन की धारणा क्यों हो गई? क्योंकि समझ मिल गई वो हमारे लिए भोजन है ही नहीं, व्यर्थ है। चीजों की व्यर्थता का पता चलते ही अपने आप त्याग हो जाता है। एक दूसरा मार्ग है, जैसे बीच में बहुत समय पहले ज्ञान सरोवर में वो पीस ऑफ माइंड रिट्रीट हुई थी, कभी बहुत पहले की बात है, तो उसमें पहले दिन ही बताया था सब लोगों को साइलेंट रहना है। इतना मुश्किल हो गया सब लोगों को, इशारे से बातें करने लगे, वो तो बाहर वाले लोग आते हैं बैच और इशारों से। सप्रेशन, हमारा साइलेंस इसलिए ना हो कि थोपा गया हो, उससे कभी भी अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म अंदर से आना चाहिए तो ही वो रहेगा। अगर कोई यहां आके कह दे, कोई बाहर का व्यक्ति आया यहां पर, उसको आज से कह दो कल सुबह 4 बजे उठना है, ये नहीं बताओ उसको, महत्व नहीं बताना, और उसको ये कहना बिल्कुल ब्रह्मचर्य, और तीसरा खाना तो बाहर का देखना भी नहीं, ही विल, तो उसके लिए जीवन सजा हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने सिद्धांत बता दिए, वो क्यों करना है ये नहीं बताया। इसलिए जो कुछ भी करना है उसको कैसे करना है, समझकर। जो चीज मुझसे छूटी नहीं रही है, जरूर कहीं ना कहीं सेपरेशन हो रहा है, पहले तो उसको स्वीकार कर लो, हाँ है, और अब इसके वजह से नुकसान क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाओ, निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाओ, तब वो चीज अपने आप छूट जाएगी। दमन नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, वो जबरदस्ती ज्यादा समय चलती नहीं है कोई भी चीज। अगर ये भी मैं मान लूं ये मुरली मेरी है, जैसे किसी और के हाथ में दिखेगी आग लगेगी अंदर। भावनाओं पर काम करना है, थॉट्स पर कम, फीलिंग्स आर मोर पावरफुल देन थॉट्स। इमोशनली जिसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, अपने आप सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, विवेक से विवेक ढीला हो जाता है भावनाओं के सामने। इसलिए अपनी भावनाओं को स्पिरिचुअल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, और चीजों को समझना है। बाबा ये क्यों कह रहा है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, कौन सा आदि, किसका मध्य और किसका अंत, बहुत बड़ा प्रश्न है। किसके लिए बाबा कह रहे, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, काम दुख देता है, आदि मध्य मतलब किसका आदि, किसका मध्य और किसका अंत, क्रिया का। Yeah. पूरे संबंध का, या ये कल्प के लिए कहा जा रहा है, द्वापर आदि मध्य अंत, व्हाट सोचना है। तो हम बात कर रहे थे एम अर्थात मनन, हर चीज को वैसे ही स्वीकार नहीं करना है। यहां लिखा है मतलब स्वीकार कर ले, दैट्स इट, नो। दो स्टेजेस है ज्ञान में, एक होता है संशय बुद्धि, हम वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं, संशय नहीं है अभी, अब हमारे अंदर संदेह है। संदेह और संशय में अंतर है, संदेह पॉजिटिव है, संशय निगेटिव है। संशय नहीं है कि ये भगवान की वाणी है, पर नाउ आई हैव संदेह कि ये जो कहा है ये क्या है, इसको मुझे समझना है। इसलिए क्या क्यों कैसे कब कहां, ये प्रश्न। बाबा ने कहा है वो गाय जो उगारती नहीं है, उगारना वो क्या है, बीमार। वो बच्चे जो ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते वो है बीमार। तो फर्स्ट एम अर्थात मुरली का मनन, उसके बाद यू अर्थात अंडरस्टैंडिंग, हर चीज को समझना है ये क्या है। बाबा ये जो कह रहा है, वाणी एक शब्द बोलो और वाइब्रेशन 100 शब्द का फैलाओ तब असर होता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं एक ही वाक्य ले लिया, अब उसका चिंतन करो। यहां जो बाबा ने कहा कि दृढ़ता, क्या करो, दृढ़ता। अगर कोई भी संकल्प को रोज रिवाइज करते रहो तो जैसे कोई भी चीज पक्की करते जाओ तो पक्की हो जाती है, तो जो संकल्प किया उसे छोड़ नहीं दो, रोज उस संकल्प को रिवाइज कर दृढ़ करो, तो फिर यह दृढ़ता सदा कार्य में आएगी। कभी कभी सोच लिया क्या संकल्प किया था, या चलते चलते संकल्प भी भूल जाए क्या किया था, तो कमजोरी आती है। रोज रिवाइज करो और रोज बाप के आगे रिपीट करो तो पक्का होता जाएगा और सफलता भी सहज मिलेगी। दिस इज द वे, ये विधि है। दमन नहीं करना है कोई भी चीज का, भगवान कह रहा है ये करो, रोज रिवाइज करो उसको, उस पर काम करना पड़ेगा, अपने आप फिर सहज होगा। नहीं तो एक बार संकल्प कर लिया, मधुबन में लोग आते हैं हम देखते, बहुत संकल्प करके जाते पर जैसे बाहर जाते हैं खलास, कुछ नहीं रहता। अंडरस्टैंड, यू अर्थात अंडरस्टैंड, आर एम यू आर, आर अर्थात रीड एंड रिवाइज। मुरली खाली एक बार सुनने से कुछ नहीं होता है। दादी जानकी को कभी, दादी जानकी जब ज्ञान में आई तो उसको लगा कि ये सब लोग मेरे से पहले आ गए, 1.5 साल बाद मैं आई। बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या करूं अब, मैं ये सब मेरे से बहुत आगे चले गए, तब दादी को टेंशन हो गया कि ये लोग मेरे से पहले आ गई, मम्मा मेरे से पहले आ गई, प्रकाश मेरी दादी मेरे से पहले आ गई, अब मैं क्या करूं।
मैं तो पीछे रह जाऊंगी। बाबा ने कहा 6 बार मुरली पढ़ो। दादी ने कहा था अगर 12 बार पढ़ू तो। 12 बार मुरली पढ़ना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। 2 बार ही तो नहीं होती है पढ़ने के, 2 बार क्या 1 बार भी नहीं होती है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। रीड एंड रिवाइज। मुरली को क्या करना है, लिसनिंग इज नॉट इनफ, ऑरल मेमोरी, विजुअल मेमोरी चाहिए। विजुअल मेमोरी में पढ़ना, तो रोज मुरली पढ़ना है 1 बार 2 बार, और उसमें से मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकालना। उसके बाद में एल, एल अर्थात लिसनिंग, लिसनिंग सुनना, मुरली को लिसन, हियरिंग नहीं लिसनिंग, हियर अर्थात इधर से सुना और इधर से गया, लिसन, लिसन अर्थात जब वो सुन रहे उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाना, एकाग्र हो जाना कि ये पॉइंट वो पॉइंट, और कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें नोट करके रखना है। पूरा वाक्य नोट करने की आवश्यकता नहीं, मेन मेन टॉपिक्स, जैसे इसमें से नोट करेंगे फॉर्च्यून, लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून्स, हमारे क्या क्या फॉर्च्यून्स है, भाग्य की लिस्ट। यदि हम अपना खुद का जीवन देखें तो क्या निकलती है लिस्ट। कई बार मुरलियों ने बाबा ने कहा है भाग्य की लिस्ट बनाओ, कौन कौन से भाग्य मिले हमको, भगवान मिला ये सबसे बड़ा भाग्य है, अपना परिचय मिला सबसे बड़ा भाग्य, संगम युग का परिचय मिला, मुरली मिली, ब्रह्मा भोजन मिला, मधुबन मिला, परिवार मिला, यज्ञ मिला, देवता बन रहे फरिश्ता बन रहे, श्रीमत मिली, ज्ञान मिला, सेवाएं मिली, ये सब भाग्य की बहुत बड़ी लिस्ट है। पहले का जीवन कैसा था और अब का जीवन क्या है, पहले क्या खाते थे अब क्या खाते हैं, पहले क्या पहनते थे अब क्या पहनते हैं, पहले कहाँ घूमने जाते थे अब कहाँ घूमने जाते हैं, मेक अ लिस्ट। ये है मुरली का चिंतन, इस तरह उसको गहराई से सुनना है। और लास्ट पॉइंट आय, एम यू आर एल आई, आय अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना। कोई नई पॉइंट मिल गई, जैसे इसमें बोल की पॉइंट मिल गई, रात को सोने से पहले चेकिंग कि सारे दिन भर बोल ठीक ठाक थे, हर्टफुल तो नहीं थे, रूड तो नहीं थे, दुखाने वाले तो नहीं थे, कमेंट्स वाले तो नहीं थे, कैसे थे, अफवाहें तो नहीं फैलाई, रूमर्स ग्रेपवाइन, किसी की ग्लानी तो नहीं की। डीप चेकिंग इज नीडेड, बहुत गहराई से स्वयं की चेकिंग करनी है। तो बाबा से प्यार अर्थात सबसे पहली पॉइंट मुरली से प्यार, और मुरली से प्यार अर्थात ये पांचों चीजें करनी है, मनन, अंडरस्टैंड, रीड, रिवाइज, लिसन, इम्बाइब, ये पांचों चीजें रोज होनी चाहिए। ये केवल पॉइंट्स लिखने की बात नहीं है, करने की बात है जो यहां बताई जा रही है। तो बाबा से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, दूसरा बाबा से प्यार अर्थात राजयोग से प्यार, उसने जो सिखाया हुआ योग है उस योग से प्यार, उस योग का अलग अलग रीति से अभ्यास करना है। एक ही योग रोज ना हो, जो अमृत वेला योग किया शाम को कुछ और, नए नए अभ्यास करने। हमने कई वर्ष तक एक अभ्यास किया, जैसे ही उठते तो उठते ही सबसे पहले वरदान पढ़ लेते थे टेक्स्ट, ओके, और फिर हॉस्पिटल से हम अमृत वेला करने मधुबन जाते हैं, जाते जाते ही उस टेक्स्ट को ड्रिल में कन्वर्ट कर देना, और फिर वहां पहुंचकर उस ड्रिल का अभ्यास करना, टेक्स्ट को कन्वर्ट इनटू ड्रिल, उसमें कुछ भी आता है जैसे ये। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है, कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती है कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई फिर भी घबराए नहीं, सत्यता के लिए सहनशीलता की शक्ति आवश्यक है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं सदा की विजय है। यह है वरदान, सुबह पढ़ लिया, मैं आत्मा ऊपर गई ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा ने हाथ रख दिया और सत्यता की शक्ति मुझ में भर दी, या तिलक दे दिया सहनशील भव, टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू ड्रिल, कुछ भी, एनी बुक, ये अभ्यास हमने कई वर्ष तक किया। तो वो जो शब्द है अमृत वेले, उसका चिंतन करने से और पावरफुल हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं, उसका हम स्वरूप बनते हैं। तो क्या करना है, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार, और योग में भी क्रिएटिविटी, नवीनता, नए नए प्रकार का योग, तो राजयोग। तीसरा, बाप से प्यार अर्थात सेवाओं से प्यार, जो भी सेवाएं मिले खुशी खुशी से करना है, क्योंकि सेवाओं से बहुत भाग्य मिलता बनता है। बाबा ने कहा वैसे भी आत्मा के इतने पाप है कैसे दूर करे, योग तो लगता नहीं है, मुरली का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्या करे, ऑप्शन है सेवा। जहां जहां सेवा मिल जाए, छोटी भी सेवा मिल जाए, यज्ञ की कोई भी सेवा, झाड़ू लगाने की भी सेवा सेंटर की, ये कोई छोटी सेवा नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य। तो सेवाएं, भगवान खुद कहता है मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ऐसी कोई भी सेवा ना हो जो हमने ना की हो, सब प्रकार की सेवा, ऑल राउंड, हर प्रकार की सेवा, झाड़ू लगाने से लेके साफ सफाई करने से, भोजन बनाने से लेकर, तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से लेके, तो भाषण करने की सेवा से लेके, तो मनसा सेवा, हर प्रकार की सेवा। एक तो ये लिस्ट बनानी है कौन सी चीजें सेवा है जो हमने नहीं की। एक है आंतरिक सेवा, एक है बाहर की सेवा, एक है ब्राह्मणों की सेवा, एक है बाहर वालों की सेवा। एक लिस्ट बनानी है कि पूरे शहर में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जहां पर अब तक सेवाएं नहीं हुई है, कौन से हॉस्पिटल्स की लिस्ट जहां सेवाएं नहीं हुई, कितने कॉलेजेस है जहां पर आज तक हम नहीं पहुंचे, वो कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जहां हम नहीं गए, और हम उसका निमित्त बन सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं, पहचान बढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ सेवा कर सकते हैं। सेवाओं में नवीनता, कौन सी वो बात है जो हमने नहीं की है। डेज की लिस्ट बनानी है, एक लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, पूरे मास में, जैसे अगस्त मास में कौन कौन से डेज है, फिर इस डे में अच्छा ये है तो इसमें कुछ किया जा सकता है क्या, क्या इस इन लोगों की सेवा की जा सकती है। कोई भी डे हो सकता है, वेमेंस डे जैसा होता है, वैसे ढेर सारे डेज की लिस्ट है, हर दिन कुछ ना कुछ डे है, हम कुछ कर सकते हैं क्या, निमित्त बन सकते हैं क्या, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, कुछ भी। तो तीसरा, बाप से प्यार अर्थात सेवाओं से प्यार, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मना सेवा, तन मन धन की सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा। धन, धन भी एक ऐसी चीज है व्यक्ति पकड़ के रखता है, ये भूल जाता है कि ये कुछ जितना इस यज्ञ में लग जाए उतना ही वो सफल सूक्ष्म भाग्य बनेगा। बाबा उदाहरण देते थे, गुड़गांव की माता है, चावल भेजती थी उसमें एक सिक्का डाल देती थी, यज्ञ के काम आ जाए, सब काम आ जाए, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए। और भगवान के महावाक्य, गरीबों की पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा। तो सेवाओं से प्यार। चौथा, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, ये जो ब्राह्मण परिवार है इस परिवार से प्यार, और इस परिवार में सब वन वन की काठी, अलग अलग स्वभाव संस्कार की आत्माएं आई है, पर कैसी भी है इन्होंने भगवान को तो जाना, उनमें दो तीन विशेषताएं तो जरूर है संसार की आत्माओं के कंपैरिजन में। पहला, भगवान को जाना, दूसरा पवित्रता धारण की, तीसरा किसी ना किसी रूप से अपने आप को तन मन धन से यहां समर्पित किया, स्थूल या सूक्ष्म कैसे भी, ये तीन विशेषता तो हर एक में है जो भी भगवान की बनती है। तो इस परिवार से प्यार, और सबसे ज्यादा हिसाब किताब कहां चुकतु करने पड़ेंगे, इसी परिवार में। क्यों, बाहर वालों से इतने हिसाब किताब नहीं है, जो ज्ञान में नहीं है उनसे, घर वालों से इतने नहीं है, ज्यादा किधर है, यहाँ क्यों सबसे ज्यादा हम इन्हीं के साथ रहे हैं? हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जो भी मेंबर्स है वो वही है जन्म जन्म के जो हमारे दुश्मन थे। हमारे घर में पति पत्नी और बच्चा बनकर कौन आए हैं? वो जो आए हैं जन्म जन्म के दुश्मन। किस लिए आए हैं? बदला लेने के लिए, तंग करने के लिए नहीं, हिसाब चुक तो करने आए हैं। छोटा सा बच्चा जन्म लिया पालना में, कितना मीठा लगता है, कितना प्यारा लगता है बच्चा, पर उसके हाथ में एक तलवार है, वो दिखाई नहीं देती माँ बाप को। तलवार लेकर आया है वो, किस लिए? सारे हिसाब चुक तो करने के लिए। खलील गिब्रान की एक कविता है, यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। ये मत समझना ये मेरे लिए आया है, अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर मत थोप देना, वो अपने काम से आया है। जरूरी है उसको पकड़कर ब्रह्मा कुमारी बना देना है या ब्रह्मा कुमारी बनाना है। जितने बी के पेरेंट्स है, मधुबन में इंटरनेशनल रिट्रीट होती है, पेरेंट्स रिट्रीट, उसमें सारे पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे एकदम ब्रह्मा कुमार बन जाए, माताओं को लगता है मेरी बेटी बस सेंटर पर जाकर सेंटर बस अपना जीवन सेंटर पे दे दे, ऐसी इच्छाएं होती है। और छोटी छोटी बच्चे बचपन में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, संडली पर बैठकर मुरली सुनाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं रंग बदलते जाते हैं, फिर तो नाम भी नहीं सुनना चाहते ब्रह्मा कुमारी का। सब देख लिया, सब बताया, हजारों बार बाबा से मिल लिया, मधुबन जा चुके, अब जाना ही नहीं है। एकदम अपोजिट, विरोध। यूअर चिल्ड्रेन और नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू, उनके अपने हिसाब है। इसलिए ज्ञान योग की इच्छाएं भी उनके ऊपर थोपना मत। वो आना चाहते तो ठीक, आज बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहे, कल कहेंगे मुझे शादी करनी है, करा दो, उनके पीछे नहीं पड़ना है। हर एक की अपनी यात्रा है। तो हमारे सबसे ज्यादा हिसाब कहाँ है? इसी परिवार में। हर ब्राह्मण आत्मा के लिए ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है, और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। एक एक ब्राह्मण आत्मा क्या है? पेपर। हर एक से एक दिन पेपर आएगा। जिनको हमने ज्ञान में लाया, कोर्स कराया, ज्ञान में लाया, मधुबन लेके गए, मुरली सुनाई, सब कुछ के एक दिन वही विरोध में खड़े हो सकते हैं, जिनकी बहुत पालना की, क्योंकि हिसाब इसी परिवार से चुकतू होने हैं। और ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छा, होने दो, फटाफट चुकतू हो जाए तो हम भी तो मुक्त हो जाए। फटाफट फटाफट जिसको जितनी गालियां देने आके दो और जाओ, जिसको जितना विरोध करना है करो और जाओ। ये भी तो हमने भी तो गालियां देंगी। माता है बाबा से कहती, बाबा हमको बचाओ, हमारा पति हमको मारता है। बाप कहते, तुमने भी मारा होगा। ये मुरलियों में सुना होगा ना, बाबा ने ये थोड़ी ना कहा कि अच्छा ठीक है मैं बचाता हूं। वो बचाने की तो कहां बात करता है, एक मुरली में था, क्यों बचाऊं, युद्ध में आए वहां तो मरते ही है लोग, मरो, वो साक्षी है। इसलिए हो सकता है द्वापर में हम बहुत बड़े राजा थे, एक राज्य पर आक्रमण कर दिया, दूसरे राज्य पर, सब राज्य नष्ट कर दिया, सब बेघर हो गए, सब मर गए। या हो सकता है हम बहुत बड़े जमींदार थे और किसी गरीब किसान की जमीन ही हड़प ली, अब वही किसान हमारा इंचार्ज बनकर आया है। बॉस बॉस, या पति बनकर आया है, या पत्नी बनकर आई है, या अपना बच्चा बनकर आया है। हाउ टू डील विथ टफ बॉस एक किताब है, हाउ टू हैंडल टफ बॉसेस, ये सब इधर ही होगा। पर इसके बावजूद भी ये प्रभु परिवार है। एक सूफी संत था बायजीत, वो एक गांव गया और वहां एक झोपड़ी बना के रहने लगा, पर उसका जो पड़ोसी था बहुत तंग करता था उसको, हर दिन अपने घर का सारा कचरा आके इसके घर में डाल देता था। ये तो परेशान हो गया, ये क्या हो गया, ये तो मन में भाव है विश्व कल्याण का, सबका कल्याण हो, सब अच्छे हैं, पर ये पड़ोसी ऐसा है कि पहले दिन सारा कचरा डाल दिया, दूसरे दिन गालियां देने लगा, तीसरे दिन और कुछ किया, चौथे दिन और, इतना परेशान हो गया ये सूफी संत, अल्लाह खुदा से इबादत करने लगा, हे खुदा कुछ भी कर इसको यहां से निकाल। खुदा की आवाज उसे स्वप्न में आती है कि मैं 40 साल से इसको सहन कर रहा हूं और तुम 4 दिन में परेशान हो गए। ये 40 साल से मेरा पड़ोसी है और तुम 4 दिन में परेशान हो गए, बस यही है तुम्हारी साधना, यही है तपस्या। इसी परिवार में सब कुछ होगा। ब्लेम कल्चर, ब्लेम कल्चर पता है ना, आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप, ब्लेम गेम। इसी परिवार में मिस्ट्रस्ट, इसी परिवार में धोखा, अविश्वास, असहयोग, इसी परिवार में निंदा, विरोध, ग्लानि सब होगा। जिसके साथ हमने जो कुछ किया था वो वापस आएगा। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। विवेकानंद का एक वाक्य है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। ये तुमको जो घुसा मिला यू डिजर्व्ड इट, जरूरी था। जो धक्का मिला, जो धोखा मिला, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। ये कर्म फिलोसॉफी है, जो जिसने किया वो उसके पास वापस आएगा। इसके लिए मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जहां पर मैं हूं, जिन लोगों के साथ हूं, जहां हूं, जिन लोगों के साथ हूं, जिस समय हूं, वो सब कुछ क्या है? मेरा कर्म भोग। द प्लेस वेयर आई एम इज द प्लेस ऑफ माई स्पिरिचुअलाइजेशन। इसी स्थान को मुझे स्पिरिचुअलाइज करना है। अब यहां से कहीं भाग कर नहीं जाना है। अभी सोचते हैं ये घर में ये ठीक नहीं, मैं कहीं और जाऊं। जहां जाऊं वहां पर, यहां एक रावण है वहां 10 बैठे हैं। ये सेवा केंद्र ठीक नहीं, दूसरे सेवा केंद्र जाता हूं, वहां 10 बैठे हैं। ये घर ठीक नहीं, ये ऑफिस ठीक नहीं, ये कंपनी ठीक नहीं, कंपनी चेंज करता हूं, बॉस यहाँ का ठीक नहीं है, यहाँ का बॉस ठीक नहीं है, ये रावण है, वहां 10 रावण बैठे हैं दूसरे कंपनी में। ना तो स्थान बदलेगा, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। ये जब तक मैं सोचता हूं ये लोग अच्छे नहीं है, ये मेरे से अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते, दे शुड चेंज, फिर मैं ठीक करता हूं अपने आप को। एक बार ये बदल जाए ना तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं बदलेंगे, ना व्यक्ति बदलेगा, ना स्थान, ना परिस्थिति। किसको बदलना है? मुझे। तो बाबा से प्यार अर्थात इसी परिवार से प्यार, जैसे भी है इन्हीं से तो चुप्तू हो रहे, अच्छा है, होने दो चुप्त। और भी कोई होगा जिसको मैंने कुछ कहा होगा, आ जाओ फटाफट, चुप तो करो, बोल तो जो बोलना है, जितने आरोप लगाने हैं लगा दो, ताकि हम हल्के हो जाएं और चले यहां से हिसाब चुप तो करके। तो बाप से प्यार अर्थात तीसरा, इस तीसरा या चौथा, इस चौथा, इस परिवार से प्यार। उसके बाद में नेक्स्ट बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार। यज्ञ और परिवार, परिवार अलग है, यज्ञ निराकार है। यज्ञ अर्थात जहां धारणाएं हैं वो यज्ञ है, जहां परमात्म ज्ञान का विस्तार हो रहा है वो यज्ञ है। यज्ञ ऐसी चीज नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग नहीं है यज्ञ। बाबा कहते सैक्रिफिशियल फायर। यज्ञ अर्थात ये सारा यज्ञ ही है जो फैला हुआ है, जहां जहां भगवान का कार्य चालू है वो सब यज्ञ है। यज्ञ व्यक्ति भी हो सकता है, यज्ञ स्थान भी हो सकता है, यज्ञ कोई सिद्धांत भी हो सकता है, कुछ भी, यज्ञ इस यज्ञ। तो बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार। अगला बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। मधुबन से प्यार अर्थात एक तो सूक्ष्म मधुबन है जो मन में, एक है स्थूल मधुबन। कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कई कई सालों से मधुबन गए नहीं, छोड़ दिया मधुबन जाना। साल में कम से कम एक बार तो जाना है सबको, जाते हैं ना, सब लोग जाते हैं। तो मधुबन से प्यार, और मधुबन से प्यार अर्थात वहां की वस्तुओं से प्यार, मधुबन से प्यार अर्थात भोजन बहुत सारा ले लिया आधा छोड़ दिया, चाय ग्लास भर पे ले ली आधी पी और रख दिया। मधुबन से प्यार अर्थात लाइट ऑन और बाहर, मधुबन से प्यार अर्थात ये फैन ऑन करके रख दिया चले गए, ये मधुबन से प्यार नहीं है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रिसोर्सेस, फूड, इन सब की बचत करना वहां जाकर, ये मधुबन से प्यार है। कई लोग कमरा लेते हैं, चाबी लॉक करके घर चले जाते हैं, बाद में तोड़ना पड़ता है। दिस इज अ डेली एक्ट हैपनिंग इवेंट इन शांतिवन। शांतिवन में जितने लोग आते हैं वो कई सारी माताएं चाबी लेके घर चली जाती है। अब क्या करें, बाद में दरवाजा तोड़ना पड़ता है, दूसरी चाबी मिलती नहीं है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, और हर बार नया ग्रुप आता है। पहले ग्रुप को पूरा शिक्षा दे दी, टीचिंग्स दे दी, एजुकेशन दे दिया, ऐसा नहीं करो, समझती है ठीक है ठीक है, अब नहीं अगली बार नहीं करेंगे, अगली बार वो आती नहीं है, दूसरा ग्रुप आ जाता है तब तक। नाउ यू टीच देम, उसमें वापस कोई ना कोई कुछ करता है। मधुबन से प्यार, मधुबन से प्यार अर्थात वहां के साइलेंस से प्यार। क्लास चालू है, योग चालू है, स्पेशली माताओं का मोबाइल बजता है जोर से, पहले तो उसको ये नहीं समझ में आता है मेरा मोबाइल बज रहा है, फिर दूसरे उसको बताते तुम्हारा मोबाइल बज रहा है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर्स की चेन, मोबाइल किस खाने में है वो भी नहीं पता, उसमें कुछ टाइम जाता है, उसके बाद में बटन कौन सा दबाना है, तब तक रिंग चालू है, रिंग चालू है तब तक, फिर बटन दबाया वहीं से बात करना चालू, हेलो, इधर योग चालू है 6:30 का या अमृत वेला, और बाहर साइलेंस डिस्टर्बेंस, ये मधुबन से प्यार नहीं है। मधुबन से प्यार अर्थात तपस्या, मधुबन से प्यार अर्थात ये नहीं कि बाहर मधुबन में गए शांतिवन में और हाफ ऑफ द टाइम बिजी इन शॉपिंग। गए किस लिए थे, तपस्या करने, और बिजी किस में है, शॉपिंग में। तो मधुबन से बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। नेक्स्ट, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार। एक तो बताया मुरली, दूसरा है श्रीमत या फिर मर्यादा है। सेंटर पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इधर भी लगा है शायद, बाबा के कमरे में मर्यादास, उसमें कुछ मर्यादा है पर टाइम रहा तो शाम में देखेंगे। 26 मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद में बाप से प्यार अर्थात मर्यादाओं से प्यार, कितने हो गए, 7। अगला, बाप से प्यार अर्थात पवित्रता से प्यार। कोई कहे भगवान से प्यार है पर ये पवित्रता, ये ब्रह्मचर्य, ये हमसे नहीं होता है। कई ऐसे लोग हैं एक हफ्ता भी ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्राह्मण परिवार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य की बहुत सूक्ष्म परिभाषा है संकल्प तल पर। संकल्प, दृष्टि, कल्पनाएं, यादें, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, फैमिलियरिटी, बहुत सारी बातें आती है उसमें। तो बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार। उसके बाद में बाप से प्यार अर्थात सेवा केंद्र से प्यार। जैसे मधुबन बताया वैसे ही ये सेवा केंद्र से भी प्यार। बाइबल में वर्णन है जीसस क्राइस्ट वो मंदिर में प्रवेश करता है जिसको सिनेगॉग कहते हैं यहूदी भाषा में, यहूदी भाषा में मंदिर को सिनेगॉग कहते हैं। उस सिनेगॉग में आता है और देखता है वहां के जो पुजारी पंडित लोग क्या कर रहे हैं, कोई मांस बेच रहा है, कोई जुए खेल रहा है, कोई कंच कुछ कुछ कर रहे हैं, सारे कॉइन्स जु ये सब हो रहा है वहां पे। वो उसको पहली बार दिखाया क्रोधित हो जाता है, एक चाबुक लेता है सब उखाड़ इधर उधर फेंक देता है सब कुछ, और कहता है तुमने मेरे भगवान के मेरे पिता के घर को, यू हैव मेड द हाउस ऑफ माई गॉड इन टू डेन ऑफ थीव्स, तुमने डाकुओं को अड्डा बना के रखा मेरे पिता के घर को। और बाइबल में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आता है, फिर जीसस क्राइस्ट कहता है द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। भगवान के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो कैसा है? आग है आग. द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर. तो द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड ये शुड बर्न इन मी लाइक अ फायर. इस घर के लिए भी वैसा ही प्यार चाहिए. तो बाबा से प्यार अर्थात सेवा केंद्र से प्यार, और लास्ट बाबा से प्यार अर्थात निमित्त आत्माओं से प्यार. इस यज्ञ में हायरकी है, हर एक के ऊपर कोई ना कोई है, कोई भी इंचार्ज कहीं पर भी नहीं है, किसी हर एक के ऊपर कोई ना कोई है. वो उसका बॉस, वो उसका बॉस, वो उसका बॉस, इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, ये इंचार्ज, मधुबन, ऊपर से लेके नीचे तक. तो भगवान ने हर सेवा केंद्र पर एक निमित्त आत्मा को रखा है, और उसे किसी व्यक्ति ने नहीं रखा है, मनुष्य ने नहीं रखा है, भगवान ने स्वयं रखा है. इसके लिए जितने भी सेवा केंद्र कहीं पर भी विश्व में हैं, और जहां पर भी आप जाओ, वहां की जो निमित्त आत्मा है उसको स्वयं भगवान ने रखा है, और उसकी आवाज ही भगवान की आवाज है, उसके डायरेक्शन से, भगवान के डायरेक्शन से यही मानकर चलना है. तो ऐसी ये कितनी बातें हैं रूहानी प्यार में? 10 बातें. फिर से रिवाइज करते हैं, फिर ब्रेक होगा. पहला, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात योग से प्यार, दूसरा, तीसरा सेवा से प्यार, चौथा परिवार से, यज्ञ से, मधुबन से, श्रीमद से, पवित्रता से, सेवा केंद्र से, और निमित्त आत्माओं से. जो भी इंस्ट्रूमेंटल सोल्स है, इंचार्ज सोल्स है, उनसे प्यार अर्थात बाबा से प्यार. और ये प्यार हमने कहा कैसा है? रूहानी, स्पिरिचुअल, आत्मिक प्रेम है. और आत्मिक प्रेम जब होगा तो सामने वाला जो है, जिससे हमारा आत्मिक प्रेम है, उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और जिससे हमारा जिस्मानी प्रेम है वो भी पतन में गिरेगा. इसको भी समझ लेना है. जो जिससे हम आत्मिक प्रेम करेंगे, अपने आप हमारे वाइब्रेशंस, भावनाएं उसके तक पहुंचेगी, और ये आत्मिक प्रेम दोनों ही लोगों को ऊपर उठाएगा. पति पत्नी है, दोनों ही ऊपर उठेंगे. फ्रेंड्स हैं, दोनों ऊपर उठेंगे. और जिस्मानी प्रेम होगा, दोनों भी गिरेंगे. आत्मिक प्रेम दोनों की उन्नति करेगा. अच्छा, ओम शांति.